आश्रम तो राजकोट का ही था, लेकिन मैंने दो क्षेत्र, क्षेत्र का अर्थ मराठी में है तीर्थ स्थान, अपने लिए और चुन लिए। एक तो द्वारका और दूसरा लोक भारती। द्वारका तो परंपरा से तीर्थ स्थान कहलाता है, तो संस्कार मेरा है इसलिए वहां दर्शनों के लिए जाना चाहता हूँ। लेकिन इसे मैंने सांस्कृतिक तीर्थ माना है, क्षेत्र माना है, इसलिए मैं यहाँ आया आप लोगों से मिलने के लिए, दर्शनों के लिए कह लीजिए, कोई बात कहने के लिए नहीं आया। लेकिन एक प्राचीन परंपरा पुरानी ऐसी है कि दो भक्त जहां मिलते हैं वो अक्सर कुछ पारमार्थिक चर्चा किया करते हैं। इसलिए नहीं कि एक दूसरे को कुछ ज्ञान देना है, बल्कि इसलिए कि बैठे हैं तो एक दूसरे के साथ कुछ चर्चा करें। इसी बुद्धि से मैं आया हूं। मनु भाई और दूसरे जो मित्र हैं ये मेरी अपेक्षा ज्ञान भी अधिक रखते हैं, चिंतन भी अधिक करते हैं और मुख्य कर्म भी करते हैं जो मैं कभी नहीं करता, इसलिए उनके लिए बहुत आदर मेरे मन में है, स्नेह भी है। ऐसा होते हुए भी मैं चला आता हूं और कुछ बात कह भी जाता हूं। ये क्यों करता हूं? इसलिए करता हूं कि मुझे में विनय नहीं है। सूत्र ऐसा है कि विद्या विनय न शोभते, लेकिन विनय को मैंने सद्गुण माना ही नहीं। क्या होता है मैं जानता हूं। मुझे कुछ ऐसा लगता है कि विनय में मैं अगर विनय करने जाऊं तो अहंता आ जाएगी, ऐसा मुझे अपने बारे में लगता है। इसलिए अपने विषय में कम से कम मैं प्रांजल रहता हूं। चर्चा हो रही थी आज अनु भाई से, उन्होंने मुझसे कहा कि दो बातें हम आपसे जानना चाहते हैं। जानना चाहते हैं तो मतलब हम दोनों मिलकर सोचना चाहते हैं। पहली बात यह है कि क्या हमारे तत्व ज्ञान में कुछ ऐसा रहा कि जिसके कारण हम जीवन की समस्या से विमुख रहे। इस विषय का चिंतन वैसे तो मैं पिछले 50 वर्षों से कर रहा हूं, लेकिन मैं कहीं पहुंचा नहीं था, अभी भी पहुंचा नहीं हूं। लेकिन कुछ निष्कर्ष मेरे मन में स्पष्ट हो रहे हैं, उनको विचार के लिए आपके सामने रखूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस देश के तत्वज्ञान में ही एक वस्तु विमुखता है। और दूसरी है जीवन विमुखता। ये दोनों वस्तु एक ही चीज है, लेकिन मैं उनको अलग रखकर कह रहा हूं। ऑब्जेक्टिविटी एक है, इसलिए ऑब्जेक्टिविटी एक शब्द आ गया है। शंकराचार्य ने वस्तु तंत्र का उल्लेख बहुत किया है अपने भाष्यों में, लेकिन फिर भी हमारे यहां तीन सत्ताएं मानी गई। एक पारमार्थिक सत्ता, दूसरी व्यावहारिक सत्ता और तीसरी प्रातिभाषिक सत्ता। पारमार्थिक सत्ता सृष्टि की है ही नहीं। सृष्टि पारमार्थिक सत्ता से अर्थ है रियलिटी, सत्ता का अर्थ है ये पावर नहीं है वैसे जो आजकल हम करते हैं, सत्ता का अर्थ एग्जिस्टेंस रियलिटी ऐसा है। तो पारमार्थिक सत्ता तो सिर्फ एक ही मानी गई ब्राह्मण की, संसार की व्यावहारिक सत्ता मानी गई वो वैसे झूठ नहीं माना गया। शंकराचार्य ने कहा है कि मिथ्या है, लेकिन मिथ्या का अर्थ अभावात्मक नहीं है, तो उसकी पारमार्थिक सत्ता इतनी ही मानी गई। पारमार्थिक सत्ता का अर्थ है जो नित्य नहीं है, और तीसरी प्रातिभाषिक स्वप्न जो केवल हमारे मन की उपज है। अब ये सारे इसके जो सूक्ष्म आज विवाद हैं उनको तो छोड़ दीजिए, बौद्धों का है, सांख्यों का है, अलग अलग ये सब है, उनसे उनमें जाने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन इतना इस देश में रहा कि दो सत्ताएं अलग अलग मानी गई, एक पारमार्थिक सत्ता और एक व्यावहारिक सत्ता, और इन दोनों का अनुबंध कोरिलेशन कभी नहीं रहा। पारमार्थिक सत्ता के लिए प्रामाण्य वेद का माना गया, व्यावहारिक सत्ता में भी वेद और शास्त्र को ही प्रमाण माना गया, लेकिन इनका अनुबंध नहीं रहा। पारमार्थिक सत्ता क्या है कि एक ही है, एक के सिवा दूसरा कुछ नहीं है, तुम भी वही हो और ये सब वही है, एक ही है, ये पारमार्थिक सत्ता है। लेकिन व्यवहार में कहीं भी अद्वैत नहीं था, कभी नहीं था। व्यवहार में द्वैत है इतना ही नहीं तो नानात्व भी है, और इसको अध्यास कहा। अध्यास के मतलब एक भ्रम है, ब्रह्म सूत्र का जो अध्यास भाष्य है जो ब्रह्म सूत्र का सारभूत भाष्य कहलाता है उसमें इसका सब विवेचन है। सब हम लोग साथी बैठे हुए हैं इसलिए इसको विस्तार नहीं कर रहा हूं, मैं थोड़े में ही वो सारी चीज रख रहा हूं। इसका नतीजा यह हुआ कि जो इहलोक का जीवन है वो इहलोक के लिए है ही नहीं, इसमें से शरीर के लिए एक प्रकार का अनादर पैदा हो गया, उसे धर्म साधन वगैरह सब कुछ कहा है। मैं कोई कुछ भी वाक्य कोई शास्त्र का कोई वाक्य भूल नहीं रहा, लेकिन कुल मिलाकर उसका परिणाम यह हुआ कि मनुष्य का स्पर्श संसर्ग माना गया। संसर्ग अंग्रेजी में जिसे कॉन्टेजियन कहते हैं, ये तो है ना गुजराती में छूट, इस छूट का स्वच्छता से कोई संबंध नहीं है, ये पवित्रता से संबंध है। लेकिन पवित्रता वो नहीं जो नैतिक पवित्र आप लोग मानते हैं, मराठी में हम लोग उसे सोवला कहते हैं, गुजराती में क्या मर्यादीपन जो विधवा स्त्रियों में विशेष होता है देखा होगा आपने। ये हमारे जीवन में मुख्य रहा है, और इसलिए हमारे तो बहुत से महापुरुषों ने भी इसमें बहुत बड़ा गौरव माना है कि हमारी संस्कृति अरण्य की रही। अब अरण्य की संस्कृति का मतलब यह है कि वो मानव विमुख है, रिलेशनशिप उसमें नहीं है, मनुष्य का संबंध ही छूट माना जाए, संसर्ग माना जाए, इसमें से कौन सी मानवता विकसित हो सकती है। मनुष्य जैसे इतना दूर, ईश्वर के उतना नजदीक। इसलिए हमारी परंपरा में मनुष्य की सेवा कभी मोक्ष का साधन नहीं माना गया, स्वर्ग का भी नहीं और मोक्ष का भी नहीं। इसके कारण मैं बतला सकता हूं, लेकिन अब वो सब बहुत गंभीर चीज हो जाएगी। मुख्य कारण यह है कि मनुष्य को अपने कर्म के लिए जिम्मेवार मानो, इसलिए पशु के रक्षण के लिए बुद्ध और महावीर आगे आए। पशु का संरक्षण किया जाए धर्म माना गया, लेकिन मनुष्य की सेवा उसके कर्म के उपभोग में बाधक मानी गई। मनुष्य अगर दरिद्र है, दुखी है, तो उसके कर्म का परिणाम है, और आप उसको उसका दुख निवारण करने में जाते हैं तो कर्म के उपभोग में रुकावट करते हैं। ये केवल जैनों ने नहीं माना, ये सब ने माना है। हमारे देश में ये परंपरा है। इसलिए मनुष्य का मूल्य हमारे यहां नहीं रहा। ये हमारी परंपरा का संस्कृति कहना चाहे तो संस्कृति आप कह लीजिए, उसका मूलभूत दोष है। आज भी जितनी मानव सेवा की संस्थाएं हैं, ये सब अंग्रेजों के बाद की। आर्य समाज की है, कुछ ब्राह्मण समाज की है, कुछ दूसरों की है। पुराने जमाने में आपने ये नहीं सुना होगा कि दवा खाने खोले स्वर्ग में जाने के लिए, घाट बनवाए, धर्मशालाएं बनवाए, मंदिर बनवाए, अद्भुत जीवन में मनुष्य को राहत पहुंचाने के लिए, दुख निवारण के लिए और उसे सुखी बनाने के लिए अगर हम कुछ करें मनुष्य की सेवा, तो ईश्वर प्रसन्न होगा, ऐसा हमारी परंपरा में कुछ है। वो दान अलग चीज है बिल्कुल। अब ये सब साइड इश्यूज हैं, इन सबको तो मैं ले नहीं सकता, लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप इन सब चीजों को समझ सकते हैं। ये एक कारण है जिसके कारण हमारे देश में, हमारे देश पर जो हमले हुए छोटी छोटी टोलियों के लिए, छोटे छोटे देशों के लिए, किसी बड़े देश का हमला इतिहास में नहीं हुआ, और हम एक भी लड़ाई नहीं जीते। पिछली दो पाकिस्तान के साथ की लड़ाइयां छोड़ दी जाए तो इतिहास में भारतवर्ष में लड़ाई जीती हो ऐसा इतिहास है, ये इसका नतीजा हुआ। दूसरा कारण जो मैं समझता हूं वो यह है कि कुशलता और व्यावसायिकता के नाम पर जन्मसिद्ध श्रेष्ठता और कनिष्ठता हमारे समाज में रहे, ओवर स्पेशलाइजेशन। जो देव नाम का एक लेखक है मेरे, वो बहुत सी किताबों का संकलन किया करता है विचारों का, उसने शिक्षण की विचारों का भी एक संकलन किया है। तो क्या लिखता है कि नाचने वाला, जो नाचने वाली स्त्री होती है उसके पांव की उंगलियों के सिवा और शरीर में कुछ होता है, और जो कुश्ती खेलने वाला होता है पहलवान, उसके मतलब के सिवा कुछ नहीं होता है शरीर में, और जो मास्टर लोग होते हैं उनके चश्मे और उसके सिवा कुछ होता है। उसने वर्णन किया है, बहुत सही मजेदार वर्णन है, शिक्षण शास्त्र के विचारों का एक संकलन वो करता है, विचार सारे फिलोसफी का, साइंस का, पॉलिटिक्स का, एक एक छोटी विचार समृद्धि है विचारों के संकलन की। तो ये वर्णन उसने किया है, ये ओवर स्पेशलाइजेशन से ये होगा, और अंत में शिक्षण शास्त्रियों का एक निष्कर्ष लिखा है, फंक्शनलिज्म इज कलर ब्लाइंड टू ऑल ह्यूमन वैल्यू। व्यावसायिकता मानवीय मूल्यों की तरफ से अंधी रहती है, और हमारे यहां व्यावसायिकता जन्म मूलक है, इसलिए कॉम्पिटिशन स्पर्धा तो चली लेकिन ओवर स्पेशलाइजेशन हुआ जिसमें से मानवीय मूल्यों का अभाव हो गया। मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे आत्मा अभी इसी इमरजेंसी के वक्त मैं प्रोस्टेट का इलाज कराने के लिए जोधपुर में गया था, तो उसने इतना पानी मेरे शरीर में से निकलने दिया कि आखिर पानी नहीं रहा और मैं मरने लगा, लेकिन वो स्पेशल स्टॉक समझ नहीं आता था। उसने कहा कि प्रोस्टेट के सिवा तो कुछ मैं नहीं जानता हूँ और अब ये मरने वाला है तो मैं कुछ कर नहीं सकता। तो मुझे उठा कर दस लोग हॉस्पिटल में लाए मुंबई में, और मैं अब तक हूँ, लेकिन वो उसकी समझ में ये चीज नहीं आई। ये ओवर स्पेशलाइजेशन में से इंसानियत क्षीण हो जाती। तो हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े विचारक हुए, बहुत बड़े बड़े लोग हुए, इतने बड़े हुए कि इस धरती के आकार के लिए या क्षितिज के आकार की भूतियां इस देश में नहीं, लेकिन इस देश का सामान्य मनुष्य कभी ऊपर नहीं था। उसकी सतह, उसका स्तर कभी ऊपर नहीं उठता, ये इसका परिणाम है। इसलिए पारमार्थिक क्षेत्र में जिन गुणों की आवश्यकता थी उन गुणों का विनियोग व्यावहारिक क्षेत्र में कभी हुआ है। लॉर्ड कर्जन यहाँ आया था, उसने लिखा कि ये भारतवर्ष के लोग बड़े विचारक हैं, बड़ा उच्च विचार करते हैं, और इनकी संस्कृति भी पुरानी है, जो कि परंपरा बड़ी उज्ज्वल है, लेकिन ये सच बोलना नहीं जानते, क्योंकि व्यवहार में तो कुछ भी हो सकता है, परमार्थ की मूर्ति मूल्य तो व्यवहार में आवश्यक होते नहीं है। एक शंकराचार्य ने लिखा था, मैंने जब हम लोग गांधी वालों ने शुरू किया अस्पृश्यता निवारण का आंदोलन, तो भगवत गीता का वो श्लोक, लक्ष्मण शास्त्री थे या इधर शास्त्री पाठक थे, उन्होंने कहा तुम्हें चाहिए स्वपाते से पंडिता स्वयं चांदाल कुत्ता और ब्राह्मण तपस्वी ब्राह्मण, इन तीनों को ब्राह्मण यानी समान मानता है। तो भाष्य उन्होंने किया इस पर, ये गांधी को समस्या नहीं है, शास्त्र को जानते नहीं है, वहां समय दर्शन रहा है, समय वर्तन नहीं कहा है, समान देखता है, उनके साथ समान व्यवहार करता है। गाय और माँ अगर समान है तो क्या माँ को भी घास खिलाएगा? ये दर्द है जो किए गए हैं सीरियसली, आपको कैसा न समझिए कि मैं अपने ग्रह से कुछ कर रहा हूँ। मैंने इन ग्रंथों का अध्ययन किया और जो कुछ लिखा है वो आपसे कह रहा हूँ। तो अब देखने में एक रहे और चलने में बिल्कुल अलग। मैं इतना समझ सकता हूँ कि देख रहा है आप क्षितिज की तरफ और कदम भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं उस तरफ, ये तो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन देख रहा है पूर्व की तरफ और चलना शुरू कर दिया पश्चिम की तरफ, ये तो कैसे घूम सकता है? ये भी सत्तावाद सिर्फ भिन्न सत्तावाद नहीं है, विरोधी सत्तावाद है और उसको विरोधी उन्होंने माना। परमार्थ सत्य है और ये मिथ्या है, इसलिए समान मूल्य इनके नहीं होते। ये दूसरी चीज मैंने देखी। और तीसरी जो इसका जो तीसरा परिणाम निकला वो भी आप लोगों के सामने रख दूं। ये तीसरा परिणाम यह रहा कि जाति के नियमों की अपेक्षा नैतिक मूल्य गौण माने गए। ये सभी धर्मों में हुआ है लेकिन हमारे यहां विशेष रूप से हुआ। नैतिक मूल्य गौण माना गया और जिसे धार्मिक कहते हैं असल में वो है जाति या सांप्रदायिक मूल्य, उसको अधिक माना गया। हमारे यहाँ मेरे चिंतन में एक आते थे ब्राह्मण भोजन के लिए, उन्होंने नीच जात की एक स्त्री रख ली थी। तो हम छोटे से अपने दादा से पूछते थे कि आप ब्राह्मण उसको खिलाने से आपको क्या स्वर्ग मिलेगा? इसने तो वो नीच जात की स्त्री रखनी है, तो हम तो समझाते थे कि ये पवित्र है आदमी, ये उसके हाथ का पानी भी नहीं पीता। अब ये नियम नैतिक नियम गौण था या मुख्य था? जो इस मर्यादा का पालन कर लेता है वो मुसलमान में भी है, ये ईसाई में भी है, लेकिन हमारे यहाँ जाति होने से विशेष रूप से है। यहाँ पर इसकी कड़ाई, इसकी शक्ति हमारे समाज में अधिक है। तो ये तीन कारण है जिनके जिनकी सबब से हम परिस्थिति विमुख रहे, समस्या विमुख रहे और इस देश में जिसे निवृत्ति कहते हैं वो चीज पैदा हुई और उसका बहुत गौरव किया। समस्या का बहुत बड़ा प्रकोप हो जाने पर हम अपने में रिटायर हो सकते, आत्मर तो वो मनुष्य हो सकता। यह सब मिथ्या है, मृगजल है, ये तो होता ही रहेगा, ये कुछ मेरा बनाया हुआ संसार नहीं है, जिसका बनाया हुआ है वो जाने, उसका उसका काम मैं क्यों करूं। इस तरह से वो इधर आदमी भूखों मर रहा हो, दंगे हो रहे हो, इसका सिर्फ स्थान अक्षुब्ध है, वो उसके जिसमें वो एक विद्या क्या उसका नाम था मेरी टीचर ने जो पुस्तक लिखी है उसमें महादेव भाई का एक उत्तर लिखा है। इस देश में इतने महात्मा हुए, साधु संत हुए, तुमको किसी को ये बेचैनी नहीं हुई जो गांधी को हुई? राजनीतिक नेताओं को तो हुई लेकिन गांधी को क्यों हुई? तो उसने जवाब ये दिया है कि इसका कारण है दानी है पैशन। अब ये पैशन शब्द हमारे यहाँ तो बड़ा विकार वगैरह इस अर्थ में इसका प्रयोग होता है, लेकिन पैशन का मतलब ये है फीलिंग है, हृदय का है। तो ये दूसरों के दुख से दुखी होता है, दूसरों के सुख से सुखी होता है। अद्वैत को ये जीवन में इस तरह से समझा है। उस राइटर ने तो उसको आक्षेप किया था गांधी पर कि पारमार्थिक साधनों का उपयोग ये राजनीति में कर रहा है, यह आक्षेप है, और मैं उसे गौरव मानता हूं कि गांधी का यह गौरव था कि पारमार्थिक क्षेत्र के जो मूल्य थे उनका प्रयोग उसने आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में करने की कोशिश की, प्रयास किया। ये उसकी विशेषता थी, ये उसका योगदान है, कंट्रीब्यूशन है उस आदमी का। लेकिन हमारे यहां से ये माना गया कि ये जो अलग अलग हैं, ये पैशन इसमें नहीं है, वो मुक्त भी हो जाए तो कैसे होता होगा मेरी समझ में अब तक नहीं आ रहा। लोग दुखी हैं, मर रहे हैं, परतंत्र हैं, मैं अपनी जगह शांत हूं, तो क्या शांति होती होगी वो मैं तो उसका आकलन नहीं कर सक रहा हूं। जो कहते हैं कि हमको मिली है उनकी मैं तो ऐसे भी कैसे कर सकता हूँ, मैं तो मानते हूँ कि उनको तो शांति अवश्य मिली होगी। मेरा अपना अनुभव यह है कि उसकी कुछ तनाव, कुछ स्ट्रेन, कुछ टेंशन नहीं रहता होगा, तो उस आदमी में संवेदना कैसे आती होगी। लेकिन हमारे देश का एक ये धर्म है, एक ये शील है इस देश का परंपरा से कि हम जब परिस्थिति से संग आ जाते हैं तो अपने में विलीन हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं और अपनी जगह हम कहते हैं कि शांत हैं, स्वस्थ हैं। जैसे कि नाथ जी ऐसे थे जो अभी नहीं रहे, वो कहते थे कि क्या वो पत्थर हो जाता है मुझसे पूछते थे, तो मैंने कहा मैं क्या जानू आप क्या नहीं, क्योंकि ये तो मैं आध्यात्मिक जानता नहीं हूँ, इंद्रियों को समझता नहीं, ये तो आप मुझसे कह सकते हैं कि पत्थर जाता है या क्या होता है मैं नहीं जानता। लेकिन इसको दोष माना गया, इससे कि उस अशांति को जो बेचैन कर देती है दूसरे का दुख देखकर, इसको दोष माना गया। फिकत्र में वो माना गया जो इससे कुछ ऊपर है, मैं उस अवस्था को जानता नहीं, मैं समझता भी नहीं हूं, इसलिए मैं इतना ही कहता हूं कि इसका परिणाम यह हुआ कि इस देश के मनुष्य ने अंत में सारी समस्याओं के लिए जिम्मेवार भगवान को माना और उसके बाद राजा को माना। इसलिए साधारण मनुष्य में पराक्रम की प्रेरणा कभी आई नहीं, पराक्रम को भी बांध दिया, युद्ध क्षत्रियों को करना है, क्षत्रिय हार गया तो सारा समाज हार गया। उद्योग वैश्यों को करना है, वैश्य अगर असफल हुए तो सारा समाज असफल हो गया। इस तरह से ये जो व्यवसायत्मक संविभाग था जिसे नाहक डिवीजन ऑफ लेबर कहा गया है, ये डिवीजन ऑफ लेबर है नहीं असल में, ये व्यावसायिक संविभाग किया गया और वो जन्मसिद्ध था। तो मेरी समझ में अब इसको बढ़ाऊंगा नहीं, आप लोगों के सामने ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं, दूसरे भाषणों में तो काफी इसका विस्तार करता हूं आजकल, क्योंकि मैं ये हैरान हूं। जैसे आपके मन में प्रश्न उठा मेरे मन में लगा, क्या मुझे बेचैन करता है कि इतना बड़ा देश, इतना आध्यात्मिक देश, इतना धर्म प्राण देश, साधु संतों का, ऋषि मुनियों का देश, इतिहास में गुलाम ज्यादा रहा और आजाद कम रहा, क्योंकि आध्यात्मिकता का कोई खास नाता है, रिश्ता है गुलामी के साथ? ये सवाल बार बार मेरे मन में उठता रहा है। आज आपके मन में उठा तो मुझे एक समान धर्मा मिल गया कि कहीं कुछ तो रहा होगा जिसके कारण ये है। ये पवनार में मैं बैठा हूँ कोई भाषण करने के यहाँ, लेकिन मैंने एक बार ये बात कही तो वहाँ बाबू भाई मेहता रहते हैं, वो कहने लगे कि ये बात हमने कभी नहीं सुनी कि तुम इसको लिखो। मैं क्या लिखता तो मैं हूँ, मैं घर जा सकता हूँ तो क्या कहूँगा आगे चलकर अगर आपको ये जग गई है तो। ये एस्पेक्ट है। दूसरी बात आपने अभी मुझसे पूछी, उसको भी थोड़े में रखूंगा, या मैं थोड़े में ही रख रहा हूं अपनी तरफ से। ये पूछी कि आज की जो परिस्थिति है इसमें क्या करना चाहिए, क्या हो सकता है। अब आज की परिस्थिति का जो सतही यानी ऊपर ऊपर का पक्ष है, जो उसका एस्पेक्ट है ऊपर ऊपर का, उसको मैं छोड़ देता हूं। आज की परिस्थिति आप जिस तरह से देखते होंगे या मैं जिस तरह से देखना चाहता हूं वो यह है, वो यह नहीं है कि मोरारजी चरण सिंह, मोरारजी इंडिया, ये बहुत ऊपर की चीज है। शहर में क्या है, ये क्यों सब हो रहा है, इसका कारण मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में राजनीति में दो सत्ताएं काम कर रही हैं। एक है पक्ष सत्ता पार्टी और दूसरी है प्रेशर बूथ। अब ये प्रेशर ग्रुप और पार्टी ये एक हद तक समाज का विचार करती हैं, एक हद से आगे वो समाज का विचार नहीं करती, क्योंकि ये ग्रुप जो ऑर्गेनाइज होते हैं, संगठित होते हैं, वो अपने अपने सामुदायिक स्वार्थ के लिए होते हैं। उनके जो छोटे छोटे सामुदायिक स्वार्थ हैं उनके लिए सब ग्रुप संगठित होते हैं, और सब ग्रुप का स्वार्थ मिलकर लोगों का हित होता है, ऐसा कभी होता है। ये प्रेशर ग्रुप के स्वार्थों का जोर समाज हित नहीं है, और कभी कभी तो इनके स्वार्थ परस्पर विरोधी भी होते हैं। जिस प्रेशर ग्रुप की जितनी शक्ति अधिक हो उतना वो समाज को तंग कर सकता है और अपनी बात मनवाता है समाज को, ये स्पेशल ग्रुप का पॉलिटिक्स कहलाता है। पार्टी पॉलिटिक्स में और इसमें अंतर यह है कि पार्टी में सत्ता की स्पर्धा होती है, तो उसका चुनाव है, तो उसका साधन है चुनाव। तो पार्टी अपने उम्मीदवार खड़ी करती है, ये प्रेशर ग्रुप उम्मीदवार खड़े नहीं करते। इनका साधन चुनाव नहीं है, इनका साधन है घेराव, हड़ताल, उपवास, बंद, ये सब इनके साधन है प्रेशर ग्रुप के। अब ये दो तरह की राजनीति हमारे देश में इस वक्त चल रही है। इंदिरा जी के वक्त भी थी, मोरार जी के वक्त भी है। इंदिरा जी ने इसका मुकाबला इमरजेंसी से करने की कोशिश की, जिसका समर्थन उस दृष्टि से हम देखें तो किया जा सकता है, कि अराजकता की तरफ जा रहे हैं, सारे पैसे डूब खो रहे हैं और पार्टियां इस तरह से काम कर रही हैं, कोई जिंद व्यक्ति है। इसलिए लोगों का तो हित हमको देखना चाहिए, तो लोगों का हित देखने के लिए हम इन सबको दबाएंगे, ये एक उसका तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका उसका यह हो सकता है कि पार्टियों के पीछे जो सैंक्शन है उस सैंक्शन को हम सुधारें, उसका शुद्धिकरण करें। पार्टियों के पीछे आज जो सैंक्शन है वो सेना है, क्योंकि असल में तो पार्टी अंधिया लिखी है कॉन्स्टिट्यूशन में, प्राइम मिनिस्टर तो देश का होता है, कोई पार्टी का होता नहीं है। तो क्या पार्टी का कैंडिडेट मिला ही रहा हो, मेंबर रहा हो, लेकिन प्राइम मिनिस्टर सारे देश का, पार्लियामेंट का सदस्य ही अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रतिनिधि है, पार्टी का नहीं। ये कॉन्ट्राडिक्शन है, पार्टी डेमोक्रेसी में बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है, जिसको रिजॉल्व करने की बहुत कोशिश सब जगह हुई है, अब तक वो हुआ नहीं। तो ये पार्टी के पीछे जो पार्टी पावर में होगी और पार्टी में भी जो ग्रुप पावर में होगा उसका सैंक्शन है तलवार, और डेमोक्रेसी का सैंक्शन है कंसेंट, वोट। तो इस वोट को हमें कैसे करना चाहिए, डेमोक्रेसी ऑफ द कैंडिडेट की तरफ से डेमोक्रेसी ऑफ द सिटीजन ऑफ द वोटर, हर चीज सबके इंटरेस्ट में, लेकिन प्रेशर ग्रुप से पार्टी ये करेंगी। प्रेशर ग्रुप को तो मतलब ही नहीं है, वो एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री में से काम लेता है, और पार्टियों का इसमें वो अपना नुकसान देखती है, क्योंकि उनको वोटर से मतलब नहीं है, वोट से मतलब। और वोटर जितना दाखिल रहेगा वोट लेना उतना आसान रहेगा। तो सिटीजन के पास जाना